बुधवार के इस बाजार में एक नाई हजामत बनाने बैठता था। उन दिनों मैं स्कूल जा रहा था। मुझे भी औरों की तरह बाल कटवाने की इच्छा होती। पहली बार नाई के पास गया था। यूं अब तक माँ ही मेरे बाल काटती काटती कहने के बजाय वह उन्हें साफ करती, कहना ज़्यादा ठीक होगा। उनका तरीका यह था कि 10 पैसे के भारत ब्लेड से सारे बाल वह साफ करती जाती। सिर पर आग सी पड़ती, अनेक स्थानों पर ब्लेड लगता, खून निकलता। मैं रोता, वह गुस्से से लाल पीली हो जाती, खूब पीटती। मैं और चिल्लाता, लगता सिर पर का चमड़ा ही उधेड़ा जा रहा है। मुझे बहुत जलन होती। बाद में इतने चिकने सिर को देख कक्षा के लड़के तबले की तरह अपनी उंगलियां उस पर चलाते। मैं बहुत परेशान हो जाता। एक बार बाल साफ करने के बाद माँ उस ब्लेड को सुरक्षित रखती अगली बार के लिए। नाई ने मुझे देखा, मेरे सिर की ओर देखा। तू यहाँ क्यों खड़ा है? मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। मैं हिम्मत से बोला, मेरे पास पैसे हैं। उस समय दूसरे गांव का एक आदमी अपने बाल कटवा रहा था। उसे मुझ पर दया आई। उसने कहा, बैठो। तो वह नाई भड़क गया, कहने लगा, अरे यह तो महार है, इसे जाने दो। गांव के भैंसों के भी बाल साफ करने वाले उस नाई के लिए पता नहीं मैं क्यों अपवित्र था। दत्तू मामा का लड़का आरुण उस नाई के पास अपने बाल कटवा लेता था। वह दूसरे गांव का था, उसकी जाति नाई नहीं जानता था। बाद में मैं भी बाल कटवाने के लिए 4-5 मील चलकर दूसरे गांव के नाई के पास जाता, कभी चुंगी तो कभी बुहारनपुर। आगे चलकर श्रीमंत अण्णा ने नाइयों को कोर्ट में खींचा। उसके बाद वह हमारे भी बाल काटने लगा। संता माय सवेरे उठकर रोज मेरा मुंह देखती। मैं जब छोटा था तब मुझे पीठ पर बांधे वह गांव की सड़कें झाड़ती, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगाती। किसी घूरे के पास बैठकर मैं संता माय का झाड़ू लगाना देखता। उनकी झाड़ू के कारण धूल का बवंडर उठता, उसी बवंडर में वह झाड़ू लगाती। उनका चेहरा और शरीर धूल से भर जाता। झाड़ू लगाने के बाद मैं कूड़े को टोकरी में भरता। संता माय उस भरी टोकरी को सरपंच के घूरे पर डाल आती। हम दोनों बुधवार को तड़के ही निकलते। जानवर जब बाहर निकलते तब तक हमारा काम खत्म होता। तड़के जब हम दोनों निकलते तो शंभू बाप रास्ते में मिलता। शंभू विट्ठल का भक्त था, महारों की बस्ती का चोखा महार। रोज तड़के उठकर वह आरती के लिए निकलता। उसके हाथ में भगवा झंडा तथा गले में चोखा महार का कपड़ा बंधा रहता। हम उसके पैर छूते। वह हमारे साथी पर अबीर लगाता। झाड़ू लगाकर वापस लौटते समय रास्ते में शंकर भी मिलता। वह जानवर छोड़ू की आवाज लगाता। उसके कंधे पर काली गुदड़ी तथा हाथ में लाठी रहती। वह लंगड़ा कर चलता। वह सबके जानवर लेकर निकलता। बुधवार को सवेरे मैं बची खुची रोटियों के टुकड़े चटनी के साथ खाता। दोपहर में कसाई आता, सारी बस्ती उस पर टूट पड़ती। मसा माँ बकरी का मटन नहीं खाती थी। बकरे का हो तो ही लेती, मटन ताजा हो तो 1.5 किलो लेती। बुधवार को हम कसाई की प्रतीक्षा करते, अतिथि की प्रतीक्षा की तरह। बुहरानपुर की कसाई का कसाई साइकिल पर मटन का बोझा लेकर आता। वह दिखा कि मैं घर की ओर दौड़ता, माँ को संदेशा देता। सभी झोपड़ियों में हलचल शुरू हो जाती। इमली के पेड़ के नीचे कसाई अपनी दुकान लगाता। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते। पेड़ की किसी शाखा से वह धड़ टांग देता। बहुत सहजता से वह उसे काटता और तराजू में वजन करता। कुत्ते इकट्ठे हो जाते। बूचड़ के सामने धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती। थालियां कटोरे लिए औरतें हो हल्ला करती। मक्खियां इतनी भिनभिनाती कि मांस दिखाई ही नहीं देता। कसाई हर बार हाथ घुमाकर उन्हें भगाता। आकाश में गिद्ध दिखलाई देने लगते। मैं माँ के साथ वहीं पहुंचता। माँ अक्सर उसके साथ झगड़ती। टांग का मटन लगाओ ऐसा कहती, चर्बी मांगती। मेरे लिए कभी कभी गुर्दे कपूरे लेती। मटन की थाली को आंचल में छिपाए माँ घर की ओर निकलती। मैं कसाई द्वारा दी गई बोटियों को लेकर उनके पीछे पीछे निकलता। कभी अचानक ऊपर से चील झपटती और बोटियों को उड़ा ले जाती। चील के पंजों से कई बार हाथ लहू लुहान हो जाता। माँ पीटती, दो चार गालियाँ देती। संता माँ चटनी रोटी खाकर सवेरे को निकलती। साप्ताहिक बाजार की जमीन पर झाड़ू लगाती। वहाँ दुकानदारों से कुछ मांगती, मैं उनके पीछे पीछे थैलियाँ लेकर निकल पड़ता। ग्राम पंचायत से संता माँ को वेतन वगैरह नहीं मिलता था। ये लोग जो देते वही उनका वेतन होता। कपड़े के व्यापारी 10-10 पैसे देते। मिठाई के दुकानदार थोड़ी सी मिठाई देते। सब्जी वाले हरी सब्जियाँ, मिर्च, प्याज, सड़े गले फल देते। कुछ ऐसे भी थे जो कुछ भी नहीं देते। संता माया उनसे झगड़ती। वे बाद में आने के लिए कहते। दो दो बार जाना पड़ता। थैलियाँ चीज़ों से भर जाती तो मैं घर जाकर उन्हें खाली कर फिर ले आता। मैं दिन भर घर से बाजार, बाजार से घर दौड़ता रहता। इसी कारण बुधवार अच्छा लगता। बुधवार को ही कपड़े धो लेता, जरा ठीक ठाक रहता। महारों की बस्ती में सभी लोग उस दिन दोपहर तक मोल मजदूरी से लौटते। साप्ताहिक बाजार करने के लिए बस्ती पर उत्साह छा जाता। गांव भी काफी भरा हुआ लगता था। आसपास के कई गांव के लोग इस बाजार के लिए आते। शिवंता बाजार के दिन आती, बवंडर की तरह घूमती। मैं उसे देखता, वह मुझे। तब बाजार खत्म हुआ होता। बाजार खत्म होते ही कपड़े के व्यापारी कपड़ों की गठरियां बांधने लगते। गठरियां स्टैंड पर ले जाते। मैं हमाली की आशा में वहीं घूमता। हमाली मिलती, कपड़े का बोझा सिर पर लिए मैं स्टैंड पर जाता। दादा गुस्सा करते, कहते हमाली नहीं करनी है। एक गाल को ऐंठ दे तो दूध आ जाए और दूसरे को ऐंठ दे तो खून, ऐसी वह उम्र थी। पर इन दिनों मैं हवा खाकर मटर गश्ती कर रहा था। इसी अवस्था में गलत आदमियों आदतों का शिकार भी हो गया था। पीकर फेंकी गई बीड़ियों या सिगरेटों के टुकड़े मैं उठाता और उन्हें पीता। रिपीट, पीकर फेंकी गई बीड़ियाँ या सिगरेटों के टुकड़े मैं उठाता और उन्हें पीता। लड़कियों पर लाइन मारता, दातून करता, शौच के लिए पानी ले जाता। हमारी बस्ती 100-150 घरों की, मेरी आयु के 10-15 लड़के तथा 7-8 लड़कियां। बेहद गर्मी, आवारा कुत्ते, मुरझाए चेहरों के बच्चे, चुट्टा पीने वाली बूढ़ी औरतें, अधगिरे मकान या झोपड़िया, झूमते शराबी। मन लगाने के लिए इसके सिवा और क्या था इस बस्ती में। पर जिस दिन शेवंता की आंखों से मेरा परिचय हुआ, उस दिन से बेचैनी भी खूबसूरत लगने लगी। शेवंता की माँ जहाँ काम मिलता वहाँ चली जाती। पिता गड्ढे खोदता और शेवंता घर पर 3 भाइयों को लेकर बैठी रहती, उन्हें संभालती। शेवंता थी 10-12 साल की। 1-1.5 वर्ष से मैं उसका गौना हो जाएगा। उसका छोटा भाई हमेशा उसकी बाहों में होता। माँ बच्चों को जन्म देती और शेवंता बच्चों को संभालने का काम करती। दो छोटी बहनें हमेशा रोती हुई उसके पीछे लगी रहती। केवल 2 रोटियां रखकर माँ बाप घर से निकल जाते। एक एक निवाला खाकर लोटा लोटा पानी पीकर जीने वाली यह बस्ती। शेवंता कभी खुलकर हंसती नहीं थी। बालों को न कभी तेल मिला न पानी। माँ बाप की जिंदगी में शेवंता कोल्हू का बैल बन चुकी थी। उसकी आंखों में गाय की आंखों जैसी निरीहता झलकती थी। उसकी माँ फटी साड़ी को बार बार सीकर पहनती। पिता अनेक थिगरों की कमीज पहनता। दोपहर में वह बहनों के बालों में जुएं ढूंढने बैठती। मैं शेवंता की ओर देखता जैसे किसी दुर्घटना को देख रहा हूं। वह जब घर में होती मैं सीटी बजाता, गाना गाता। मेरी आवाज़ सुनकर वह झोपड़े से बाहर आती, जानबूझकर बर्तन मांजने बैठती। मैं नदी की ओर जाता तो वह भी निकलती। वह नदी की ओर निकलती तो मैं भी निकलता। वह अपनी झोपड़ी से मेरे चेहरे पर आईना मारती, मैं उसे इशारा करता। उसे कच्ची इमली निकाल कर देता, हम दोनों एक दूसरे में उलझ रहे थे। एक दिन मैं नदी में नहा रहा था, पानी से खेल रहा था, पर वास्तव में शेवंता की प्रतीक्षा कर रहा था। बदन पर मैला छाया हुआ था, मछलियां शरीर से खेल रही थी, गुदगुदी हो रही थी। वहीं नाक साफ करता, नेटे की ओर मछलियां इकट्ठी होती, काले पत्थर से शरीर साफ करता, किनारे पर साबुन से लोग कपड़े धो रहे हों तो मैं भी अपने कपड़े धोने लगता। वे लोग कपड़ों को साबुन लगाते और उसे पत्थर पर धीरे धीरे पटकते, फेन निकलता बहने लगता। उसी बहते फेन में मैं अपने कपड़े गीले करता। कपड़े धोने वालों की मैं कुछ सहायता करूं, इसी शर्त पर वे मुझे बहते फेन में कपड़े गीले करने की इजाज़त देते। मैं उनकी सहायता करता, उनके कपड़े सुखाने डालता। साबुन के फेन में कपड़े धोते समय मुझे बेहद खुशी होती। शर्ट का सामने का हिस्सा हमेशा काला रहता, स्लेट तथा नाक पोंछने की आदत के कारण। नदी के पानी पर कई बार मेंढकों का पखाना तैरने लगता, शैवाल फैला हुआ होता। पानी में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकालता, सिर पर शैवाल ही शैवाल। शेवंता नदी पर आए इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता। शेवंता नदी पर आती, उससे कैसे बात करूं, क्या बोलूं, डर लगता। बड़ी ही लाज आती थी, हम दूर से ही हंसते, पर निकट आने के बाद दोनों ही घबरा जाते, परेशानी होती। शेवंता सिर से आंचल हटाकर उसे घोड़े के मुंह पर बांधती, पानी भरती। पानी में आकाश दिखाई देता, मैं पानी पानी हो जाता। उस दिन शेवंता आई और तुरंत चली गई। लौटते समय पीछे मुड़कर क्षण भर मेरी ओर देखती रही, हंसती रही। मैं भी हंसा, फिर से पानी के लिए आ, मैंने इशारे से कहा। उसने भी इशारे से कहा मंजूर। मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा धरती सिर पर लेकर नाचूं, आकाश पैरों तले लिए भागता रहूं। शेवंता आती रही। एक बार मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की, आज शेवंता पर पानी उछालूंगा। पानी पर लहरें उठी, मन में भी लज्जा से डर भी गया। शेवंता पानी के लिए आई, मैंने उस पर पानी उछाला जैसे फूल उछाले हों। उसके चेहरे पर, बालों पर, शरीर पर इच्छा हो रही थी कि उसे उठा लूं, धूप में जाऊं, पानी में डुबा दूं, खाली खाली हो जाऊं, उसके साथ खेलूं, वह भी मुझ पर पानी उछाले और हम दोनों इंद्रधनुष के पीछे छिप जाएं। शेवंता घबरा गई थी। उसके बालों से निकलती हुई पानी की बूंदें मोती की तरह उसके गालों पर से टपक रही थी। उसकी आंखें नदी के पानी से भी अधिक निर्मल लग रही थी। उसके होंठ अंजुली में लिए पानी की तरह पीने की इच्छा हो रही थी, पर शेवंता घबरा गई। नहीं रे, उसने कहा। मैं पानी में था, फिर भी लगा कि तप्त रीत पर बैठा हूँ। बेईमानी छिप सकती है, पर अनैतिक बातें नहीं। शेवंता तथा मेरे प्रेम की बात घर के लोगों को मालूम हो गई। कोढ़ की तरह हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा था। संता माय कहती, शेवंता को बहू बना लेने में हर्जी क्या है? पर यह कैसे संभव था, मैं अक्करमाशी, शेवंता की और मेरी शादी कैसे हो सकती थी? संता माय रोहिदास मामा की कहानी बताती। रोहिदास मामा किसी महार लड़की को ले गया, तब पूरी बस्ती के महार लाठी कुल्हाड़ी लिए उसे ढूंढते रहे थे। पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे थे। रोहिदास भाग गया, पता नहीं कहाँ है वह। संता माय आंखों में आंसू लाकर कहती, महार बहुत भयंकर होते हैं, तेरी बोटियां काट डालेंगे, उन्हें पूछने वाला भी कौन है? और अपने घर में तो ना कोई पुरुष है और ना कोई जिम्मेदार आदमी, हम औरतों के साथ तो वे बुरी तरह पेश आएंगे, सार्वजनिक बलात्कार करेंगे। तू सोच, शेवंता को भूल जा। अगर गांव की किसी सवर्ण स्त्री के साथ तू शादी करेगा तो दलित बस्ती तेरे पीछे ताकत बनकर खड़ी हो जाएगी। धूप के दिन थे। उन दिनों मुझे कुछ अधिक समझ में नहीं थी। उन दिनों मुझे कुछ अधिक समझ नहीं थी। उस दिन जो घटित हुआ वह आज भी याद आता है। मैं और संता माया चुंगी पर से माल लेकर आ रहे थे। चुंगी पर 125 रुपये में शराब की बोतल मिलती थी। हम गांव में उसे 150 रुपये में बेचते। अलावा इसके उन बोतलों की दारू इकट्ठी करके उसमें पानी और नौसादर मिलाकर 2-4 बोतलें और ज़्यादा बना लेते। इसके कुछ दिन बाद संता माया तथा मसा माया ने घर पर ही दारू की भट्टी शुरू कर दी। दोनों की दो दो अलग अलग भट्टियाँ थीं। दोनों के ग्राहक भी भिन्न भिन्न होते थे। दोनों माँ बेटी पुरुषों की तरह धंधा कर रही थी। जब दारू बिकती तभी घर पर दाने आते। सवेरे एक कप दारू बिकी की चाय हो जाती। कभी दोपहर तक एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर तो थूक ही निगलते बैठते। ग्राहकों की प्रतीक्षा हम ईश्वर की तरह करते। 8 आने में एक कप दारू, 8 रुपये की एक बोतल, 6 बोतलों का 1 गैलन। महारों की इस बस्ती में 4-5 घरों में दारू की भट्टियां थीं। नामुअन्ना, माणकोन्ना, हीरामाय, कमलाक्का और हमारे घर में। घर पर ग्राहक हमेशा आते रहते। मैं नींद में होता। शराबी कुछ न कुछ गुनगुनाते हुए आते। कई बार आपस में झगड़ते। हम लोग घर पर खाना खाने बैठते तब भी वे आते। पीकर वहीं कह करते। उस कह की दुर्गंध फैलती। वे क्या क्या खाकर आते वह उसमें दिखता। और यह सब देखते हुए हम लोग खाना खाते। माँ उनकी कह को साफ करती, गालियां बकती। वे यूं ही बैठे रहते चुपचाप निर्लज होकर। अकेला व्यक्ति पीने आता तो वह जल्दी चला जाता। पर जब 2-4 मिलकर आते तो घंटों आपस में बातचीत करते रहते। धीरे धीरे पीते रहते। मुझसे नमक मांगते, बाहर से नमकीन या चने फुटाने लाने के लिए कहते। मैं सबके काम करता, मुझे वे नमकीन या चने फुटाने देते। कभी कभार 10-20 पैसे भी देते। घर में कहीं पर भी थूकते, माँ गुस्सा करती। वह बड़े लाड़ प्यार से बोलते। चंदा माँ उनसे निपटती। दारू का कप या बोतलें लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श करते। मैंने उन्हें ऐसा करते हुए कई बार देखा था। धंधा ही ऐसा था। माँ जब घर पर नहीं होती तो मैं ही बिक्री करता, पैसे माँ को लौटाता। फिर माँ 10 पैसे मुझे बख्शिश देती। शरण कुमार के हाथ की बोनी अच्छी होती है, ऐसा कहती। मुझे भी अच्छा लगता, सोचता पहला ग्राहक मेरे ही हाथ लगे। पुलिस का हमेशा डर रहता, इस कारण हम माल घूरे में गाड़ कर रखते और दिन भर घूरे की रक्षा करते। जरूरत के मुताबिक घूरे से माल निकाल लेते। पुलिस के आते ही हड़बड़ी फैल जाते। हम दारू की बोतलें तेजी से घूरे पर फेंकाते। कभी कभार दारू जमीन पर उधेड़ देते, ऊपर से एक घड़ा पानी डाल देते। दारू से भरी हुई ट्यूबें छत पर फेंक देते। वहां जो भी होता उसे पुलिस पकड़ लेती। एक बार पुलिस ने बस्ती को घेर लिया था। माणकुन्ना घर में मिल गया। उस वक्त उसके घर पर 2 ही बोतलें दारू थी। पुलिस माणकुन्ना को पकड़ने वाले थी कि इतने में माणकुन्ना ने पुलिस के हाथ पर ही 2 बोतलें जोर से मारकर फोड़ दी और भाग गया। शिक्षक छड़ी से बच्चों को पीटता है वैसे। माणकुन्ना का साहस अजीब था। मुझे लगता है ऐसा साहस मुझे भी करना चाहिए। माणकुन्ना जेल से छूटकर बड़े बूढ़ों के पैर छूता। पूरी बस्ती उसकी पूछताछ करती। माणकुन्ना पुलिस को गंदी गंदी गालियां देता। पुलिस आने पर बुरे हाल हो जाते, नुकसान होता, पूरी व्यवस्था ही टूट जाती। फिर कर्जा लेकर धंधा शुरू करना पड़ता। कभी कभी रेड के पूर्व ही पता चल जाता कि रेड कब पड़ने वाली है। माल ठीक बना है या नहीं यह भी मैं देखता। दारू में कपड़े को भिगोकर उसे अगर जला दिया जाए तो वह कपड़ा एकदम से आग पकड़ ले तो समझ लेना चाहिए कि माल कड़क है। जितनी आग भड़कती उतना माल कड़क। कभी कभी ऐसा नहीं होता, भट्टी गलत हो जाती। 2-3 दिन में ही माल उतर जाता। बाद का माल खट्टा लगता पर नशे के लिए ठीक होता। माल ठीक ना हो तो ग्राहक आते ही नहीं थे। वे चिल्लाते, क्या आप पानी की तरह माल है, पानी ही दे रही हो आज क्या। पैसे लेती हो तो अच्छा माल देती जाओ। अच्छा माल होता तो ग्राहक खुश हो जाता, माँ भी खुश होकर कहती, हम पानी नहीं डालते औरों की तरह, किसी को फंसा कर पैसे नहीं लेते हम, पानी का पैसा पानी में ही जाता है। अगर माल खत्म होने लगता और ग्राहक काफी आते तो संता माँ पानी डालकर एक की दो बोतलें और बना लेती, कभी नौसादर का पाउडर मिला देती। गांव के नए जवान छिपकर दारू पीने आते। मेरे एक शिक्षक सरपाटे गुरुजी की तो हमारे यहाँ उधारी ही थी। नशे में डूबे हुए ग्राहक को दारू की बोतल भी अगर धोकर दारू में के रूप में दे दे तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कभी कभी साइकिल पर माल लाने जाता, बांधता, निकलता, खरीदते समय लोटा दारू सैंपल के रूप में पानी के लिए मिल जाती। उस दिन ट्यूब लेकर कच्ची सड़क में मैं साइकिल पर निकला, नशा चढ़ रहा था, रास्ते में कई स्थानों पर गिर रहा था, गिरने के बाद फिर साइकिल पर चढ़ नहीं सकता था। सड़क पर चलने वाला कोई साइकिल पर बैठा देता। घर लौटने के बाद माँ चिल्लाती, घर पर आने के बाद जितना पीना है पी ले, रास्ते में मर गया तो। एक बार कमलाक्का तथा निर्मी माल लाने अरली गांव गई। कमलाक्का परित्यक्ता स्त्री थी, निर्मी 10 बरस की। दोनों सवेरे सवेरे गई, डेढ़ कोस आना डेढ़ कोस जाना पैदल। शाम हो गई तो भी दोनों का पता नहीं। दोनों को तीसरे प्रहर तक तो आ जाना चाहिए था। शाम के समय मैं अरली के रास्ते से निकला, पुलिस ने पकड़ा तो नहीं, किसी ने शरारत तो नहीं की, अनेक विचार आ रहे थे। कमलाक्का तथा निर्मी हो नशे में चूर हो रही थी, क्षमा करेंगे, कमलाक्का तथा निर्मी नशे में चूर हो चुकी थी। कमलाक्का की साड़ी भी खुल गई थी, वह शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। निर्मी की आंखें खुल नहीं रही थी। दोनों दारू के ट्यूब सिर के नीचे तकिए की तरह लेकर सो गई थी, किसी पेड़ के नीचे। मसामार रो रही थी, इस पेट में आग लगे, इन्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। माँ ने कहा, तू ट्यूब लेकर चल। मैं और नागे धीरे धीरे निकल पड़े। निर्मी जग जाए इसलिए संता माँ मनौतियां मांग रही थी। सभी लड़ाइयों और झगड़ों की जड़ है शराब। घर में सभी शराब पीते। शराब हमारे लिए सुबह की चाय थी। बाशा काका जब सरपंच थे तब हमारे मजे थे। संता माय सड़क साफ करती, दादा दिया बत्ती करते, किसी न किसी प्रकार दिन गुजर रहे थे। दादा कंधे पर सीढ़ी अटकाकर एक हाथ में घासलेट का डिब्बा लिए पूरे गांव के सार्वजनिक खंभों पर स्थित दियों में तेल डालते। गली के दिए के खंभों पर सीढ़ी लगा तेजी से ऊपर चढ़ते, गले में लटकाए रुमाल से उसकी झाड़ पोंछ करते, चिमनी नीचे ले आते, उसमें मिट्टी का तेल भरते, चोरी से मिट्टी का तेल घर पर भी ले आते। रास्ते में कोई जान पहचान वाले मिल गए तो सलाम करते। मैं बाशा काका को वालेकुम सलाम कहता। दादा के दिए लगाकर आने तक माँ और संता माँ जागती बैठती। बाशा काका मुसलमान सरपंच थे, वह दूसरी पार्टी के थे। माँ और संता माँ बाशा काका के घर पर दिन भर रहती, छोटे बड़े काम करती, अनाज पीस कर लाती, झाड़ू लगाती। मैं अलबत्ता दिन भर वहाँ खेलता रहता। महारो की बस्ती में आता। बासल गांव की एक आदमी ने उस दिन मुझे कपड़े लाकर पहनाए थे। वह हणमंता का आदमी था। बाद में रामू सरपंच हो गया। उसने दादा को काम से निकाल दिया। कारण केवल इतना था कि मेरे दादा मुसलमान थे, महमूद दस्तगीर जमादार। रामू सरपंच बनिया लिंगायत था, बाशा काका के दल का विरोधी था। बाशा काका ने जिस मुस्लिम कोतवाल की नियुक्ति की थी, रामू सरपंच उसे नहीं चाहता था। दादा के साथ साथ संता माए का भी काम गया। रामू ने अपनी मर्जी से के लोगों की नियुक्तियां की। मल्लू की सोना अब सड़कें साफ करने लगी। उसका बड़ा बेटा शेषु दिया बत्ती करने लगा। बाद में गैस बत्तियां आ गई। सुलगाना मामूली काम नहीं था, शेषु शराबी था, उसके साथ श्रीमंत भी रहता, दोनों गांव में गैस बत्ती सुलगाते। पर एक बार पता नहीं कैसे गैस का स्फोट हो गया कि दोनों जल गए। शेषु के कपड़े शायद मिट्टी का तेल गिरने से गीले हो गए थे, इस कारण झोपड़ी की तरह उसका शरीर जलने लगा। सभी ओर दौड़ धूप शुरू हुई। वह चिल्ला रहा था, श्रीमंत केवल निकर पर था। दौड़ते हुए वह गंदे पानी में बैठ गया। उसका आधा बदन जल गया था, पर जलते हुए शेषु को बचाने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। माणिक सेठ ने शेषु को चावड़ी के बाहर निकाला। किसी ने उस पर एक घड़ा पानी उड़ेल दिया और उसे तुरंत तहसील भिजवाया गया। गांव में सभी ओर शोक छा गया। मल्लू की सोना पागल की तरह चिल्ला रही थी। 3 दिन बाद शेषु का प्रेत आया। शेषु मिट्टी में गायब हो गया। मुझे लगा कि चौपाल में आग लग गई है। मुझे हमेशा आग से जलता शेषु दिखता। सोचता, चलो अच्छा हुआ दादा को इस जोखिम भरे काम से हटाया गया। दादा शराब पीकर झगड़ते, लोग उन्हें पीटते रहते। हमाली के पैसे व दारू में लुटा देते, कपड़े फाड़ते, सरपंच को गालियां देते, छोटे बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते। किसी भी घर के सामने स्थित नहाने के जगह पर वह पड़े मिलते। मैं, संतामाय, नागी, निर्मी उन्हें ढूंढने जाते, उन्हें उठाकर पकड़ लाते। अक्सर उनकी धोती खुली हुई मिलती। संतामाय उन्हें धोती पहनाती, वह गालियां देते, संतामाय उन पर झपटती। नागी, निर्मी, संतामाय उन्हें प्रेत की तरह उठा लाती। मैं अपने दोनों हाथों में उनके चप्पलें पकड़कर पीछे पीछे चलता। शराब पीने के बाद दादा हमेशा संतामाय से झगड़ते। दोनों के झगड़ों से मैं परेशान हो जाता। एक ओर शराब पीकर सोए हुए नाना, तो दूसरी ओर रात भर खांसने वाले नानी। सोते समय संतामाय अंबे, दुर्गे, लक्ष्मी कहती तो दादा बंदे नवाज, हाजी मलंग, अल्लाह बिस्मिल्लाह मौला कहते। कभी कभी संता माँ के शरीर में देवी आ जाती व चिल्लाती। मैं नींद से उठ बैठता। संता माँ के घूमते रहने से मैं भयभीत हो जाता, बाहर भाग निकलता। उनके निकट सोने से मैं घबराता। घर के बाहर कपकपाते हुए मैं खड़ा रहता। उनका चिल्लाना विद्रूप लगता। दादा दीवार पर की मिट्टी लेकर उनके माथे पर लगाते, फिर संता माँ का शरीर सामान्य होने लगता। दोनों पीते और झगड़ते। संता माँ दादा को पीटती, दादा खाने की थाली उठाकर पटक देते, पूरी झोपड़ी में खाना फैल जाता। इससे चंपा कुत्ती का पेट भर जाता। दादा संता माँ से इमाम आया था क्या पूछते, और यह सवाल सुनते ही संता माँ दादा को गालियां सुनाने लगती। मैं परेशान हो जाता, रोने लगता। उस दिन मुझे झूले में डालने वाले थे। संता माँ का इकलौता भाई लक्ष्मण लकड़ियां चीरने जा रहा था, माफ कीजिएगा, वो लकड़ियां बेचकर जीता था। कुल्हाड़ी पर उसका पेट था। मसा माँ ने उसे भीतर बुलाया, कहा बच्चे को देख ले, परंतु उसने कहा अब नहीं, लकड़ियां ले आता हूँ। बच्चे को नहलाने के लिए पानी गर्म करना पड़ता है, उसके लिए लकड़ियां तो लगती हैं ना, इसलिए बच्चे को न देखते हुए वह चला गया। शायद मौत उसे बुला रही थी। घर के पीछे स्थित पेड़ पर वह कुल्हाड़ी चलाने लगा। आवाज गूंजने लगी। काफी पुराना पेड़ था, सब उससे डरते थे। वहां से गुजरते समय महसूस होता था कि यह अब गिरा तब गिरा। तेज हवा चली कि उसमें से आवाज निकलती। काला भयंकर पेड़। उस पेड़ पर बैठकर जब घुग्घू पुकारते तो दिल कांप उठता। थोड़ी ही देर बाद खूब जोर से आवाज आई। मसा माँ घबरा उठी। जब पेड़ टूटने की स्थिति में आया तभी लक्ष्मण भागने की तैयारी में था, परंतु क्षण दो क्षण का फर्क हुआ, उसका सिर पेड़ के तने के नीचे आकर चकनाचूर हो गया। सातू बाप का वंश खत्म हो गया। मुझे झूले में डालने के बजाय लक्ष्मण का प्रेत बैलगाड़ी में डालकर पोस्टमार्टम के लिए दरवाजे में ले जाना पड़ा, पोस्टमार्टम के लिए दवा खाने में ले जाना पड़ा। मैं सफेद पैर साबित हुआ। मैं जन्मा मध्य रात्रि में। मसा माँ मुझे जांघों पर लिए बैठी थी। मैंने रोना शुरू किया था। संता माँ और दादा की नींद टूट गई। मेरी आवाज सुनकर दादा जग गए। उन्हें लगा बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। बड़ी छड़ी लेकर वह भीतर अंधेरे में पहुंचे। उनके पदचापों से मसा माँ चिल्लाई, मुझे लड़का हुआ है, उसे मारोगे क्या? सातू बाप का वंश खत्म होने के बाद उसके सारे काम संता माँ की ओर आ गए। सड़कों को झाड़ना, गांव वालों को अलाव जलाना आदि। जाड़े के दिनों में गांव वाले अलाव के पास बैठते। उनके धूम्रपान के लिए कुछ खास पेड़ों के पत्ते भी ला देने पड़ते। चौपाल बुहारनी पड़ती। सरकारी कागजात लेकर वह 5 कोस दूर तहसील पहुंचती। उन दिनों दादा गांव के रक्षक पद पर थे। किसी अंधेरी रात में संता माँ नदी पर साड़ी धो रही थी। चांदनी पानी पर तैर रही थी। वहां इमाम आ गया। पता नहीं दोनों क्या बातें करते रहे, पर उन दोनों को उस दिन दादा ने देख लिया। बस उसके बाद दादा जब भी दारू पीकर आते तो संता माँ को छेड़ते चिढ़ाते। आज कितने वर्ष गुजर गए उस घटना को। दोनों के दांत गिर चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई हैं, फिर भी दारू पीने के बाद दादा के जख्म गीले हो जाते हैं। आंधी से टूटे वृक्ष की तरह उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। भीमशु एक और शराबी। शराब के नशे में उसने घर खेती सब बेच दिया। हालशा कोतवाल, चंदू पुजारी, बसु, मल्लू, शरणु, मलेशा, ऐसे कितने थे जो शराब के आदि हो चुके थे। महारों की बस्ती से ये शराबी हमेशा गुजरते। आश्चर्य कि उन्हें महारों के घर की शराब अच्छी लगती पर पानी नहीं। यहाँ की औरतें अच्छी लगती पर उसके हाथ की रोटी नहीं। इस बस्ती के वे सभी जो शराब बनाने और बेचने वाले थे, गांव के हवलदार को हफ्ता देते थे, मुर्गियां खिलाते थे, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। हवलदार तथा पुलिस हफ्ता बांट लेते थे। गांव की पुलिस पटेल को हम हफ्ता नहीं देते थे, क्योंकि हमारा घर पटेल के अधीन था या पटेल हमारे घर में रहते थे। मैं उन्हें काका कहता था। मेरी माँ, मसा माँ, संता माँ की इकलौती बेटी। उसकी शादी हुई एक गरीब आदमी के साथ। विट्ठल कांबले उसका नाम। उसके यहाँ खाने के लाले पड़ते। हमेशा भूखा रहना पड़ता। दिन भर घास काटकर 2 कोस पर स्थित तहसील के गांव में जाकर जब घास बेच आते तभी खाने के लिए कुछ मिलता था। लकड़ियों की गठरी अक्कलकोट जाकर बेचनी पड़ती थी। लकड़ियां बेचकर आटा दाल खरीदा जाता था। हाथ पैर ही पेट था। रोज कमाओ, रोज खाओ। संता माय दादा कभी कभार पैदल चलकर बांसल गांव आते। 10-5 कोस चलना पड़ता था। सिर पर आटा नमक लेकर वे दोनों मसा माँ को बुलाने जाते। उन दिनों कहाँ थी बैलगाड़ियां? विठल कांबले एक खेत के मालिक के यहाँ साल भर की शर्त पर मजदूर था। वार्षिक 700-800 का वेतन। रात दिन मालिक के घर या खेत पर काम करता। खेत के अनेक जानवरों में एक और जानवर। अपने दुखों और हड्डियों के ढांचे को देखते रहना, यही उसकी नियति थी। पेट और पीठ एक हो जाते। जानवरों के गोठ की तरह उसकी भी जिंदगी थी। आंसुओं को कितना कुछ रोक सकता है, भूख की कितनी जुगाली वह कर सकता था। कोल्हू के बैल की तरह वह अपने जीवन से जोता गया था। नहर से बहने वाला कल कल पानी पेट में क्षुब्ध पसीने की एक बूंद बनकर बहता था। विट्ठल कांबले किसी हड़मंता लिम्बाले नामक पटेल के खेत में मजदूर था। बुरे समय में पटेल सहायता भी करता। इस सहायता से एक पूरा परिवार असहाय होता जा रहा था। पटेल के हाथ किसी भरे पूरे संसार ध्वस्त कर रहे थे। हेलो, गांव पंचायत ने मसाई के दूध पीते बच्चे को छीन लिया। 2-4 बरस के चंद्रकांत को भी उससे छीन लिया गया। विट्ठल कांबले ने मसा माँ से तलाक ले लिया। 2 छोटे बच्चों को छोड़कर मसा माँ रोती हुई निकली। छोटा लक्ष्मण माँ की ओर हाथ करके रो रहा था। चंद्रकांत माँ के साथ जाने की जिद कर रहा था। पति पत्नी के संबंध टूट सकते हैं, पर माँ बच्चों के संबंध कैसे टूटेंगे। मसा माँ अब खुली थी। रोज उसी रास्ते से लकड़ियों की गठरी लेकर निकलती, कस्बे की ओर जाती, पर उसकी आत्मा अपने पति में, बच्चों में रमी रहती। उसे जिंदगी से उठाया गया था। दंडकारण्य में सहारा ढूंढने वाली सीता की तरह उसकी अवस्था हो चुकी थी। वह दिशाहीन हो गई थी। विट्ठल कांबले ने दूसरा विवाह किया। पुरुषों को क्या, कितनी भी बार पान खाकर वह थूक सकता है, पर औरत जात एक बार तबाह हुई कि हो गया। मसा माह की शादी कैसे होगी। घर में खाने के लिए दाना नहीं, परित्यक्ता खुली औरत। सिर पर स्थित आंचल कंधे से खिसक गया था। दादुनिया हमारे गांव का गोंधली कलगी तुरे के गीत गाता था, नाटक भी करवाता था। बचे खुचे समय में अड़ोस पड़ोस के गांव में बर्तन भी बेचा करता था। मसा माँ के सामने उसने प्रस्ताव रखा, कलगी दूरे में गाने के लिए औरत की जरूरत होती है। उस औरत को डफ पर गीत गाना पड़ता है, पुरुष की आवाज में आवाज मिलाकर गाना पड़ता है। 4-5 लोगों को यह भजनी मंडली होती थी। माँ ने नकार दिया। अकेली ही जीने का उसने निर्णय लिया। हणमंता लिम्बाले इसी टो में था। उसने मसाई से संपर्क किया और उसे अक्कलकोट में किराए के एक कमरे में रख दिया। माँ ने भी मजबूरन हणमंता का हाथ पकड़ लिया। जिस व्यक्ति को लेकर उसे बदनाम किया गया था, जिंदगी से उठा दिया गया था, उसी के साथ रहना उसने तय किया। हणमंता ने मसाई के दाम्पत्य जीवन को तोड़ दिया और उसे अपने नियंत्रण में रख लिया, जैसे कोई शौक से कबूतर पालता। दोनों मजे में रहने लगे। मसाई गर्भवती हुई, लड़का हुआ। लड़के का बाप कौन? हणमंता को मसाई चाहिए थी, उसका शरीर चाहिए था, पर संतति? मसाई के उस लड़के के नाम के साथ अगर हणमंता का नाम लग जाता तो उसकी बदनामी होती। लड़का बड़ा होकर खेती में हिस्सा मांगे तो, मसाई कोर्ट में गई तो। हणमंता यह सब नहीं चाहता था, पर प्राप्त संतति को कैसे टाला जा सकता था। मेरे जन्म के साथ ही पटेल और जमींदार की तमाम खानदानी कोठियां बेचैन हुई होंगी। मेरे प्रथम उच्छवास से दुनिया की नीति घबरा गई होगी। मेरे क्रंदन से तमाम कुंतियों की छाती से दूध निकल आया होगा। माँ क्यों तैयार हुई इस बलात्कार को, क्यों पचाया उसने इस अनैतिक संभोग को 9 मास 9 दिन भीतर ही भीतर। किस लिए विकसित होने दिया उसने ऐसा गर्भ, कितनी नजरों ने छला होगा उसे व्याभिचारिणी कहकर। मेरे जन्म के बाद किसने बांटी होंगी मिठाई, किसने लाड़ किए हो मुझ पर, किसने दी होगी साड़ी चोली मेरी माँ को, किसने किया होगा मेरा नामकरण संस्कार, मेरा खानदान कौन सा, मैं किस वंश का दिया, किस अधिकारी पिता का मैं पुत्र। घर के निकट गंगू नामक एक आया रहती थी, वह माँ की सहेली थी। गंगू मुझे पीठ पर बांध लेती, सुई भिलवा भिलावा धागों को बेचती हुई सड़क पर घुमाती, मुझे नन्हे का प्रदर्शन करते हुए कपड़े मांगती, अन्न मांगती। औरतें मेरे कारण और मेरे लिए फटे पुराने कपड़े देती, तेल देती। माँ गंगू को डांटती, मेरे कारण गंगू को काफ़ी कुछ मिल जाता। गंगू उदास हो जाती, कहती बच्चे के लिए ही लोग कुछ न कुछ डालते हैं, मैं तेरे बच्चे को मारती थोड़ी ही हूँ। दोनों झगड़ती, माँ बाहर जाती कि गंगू धीरे से मुझे उठा लेती और भीख मांगने निकल जाती। मैं जब मैट्रिक में था तब गंगू सुई भिलावे का नारा लगाते हुए हमारे गांव आई थी। घर पर भी आई, माँ ने उसके लिए चाय बनाई। गंगू ने बड़े प्यार से मुझे पास बैठाया, मुझे चूमा, पीठ पर हाथ फेरती रही, पूछने लगी अक्कल कोर्ट चलोगे, और यह भी कहने लगी कि बाप के खिलाफ कोर्ट में जा। वास्तव में इस गंगू बाई का अर्थ था चलता फिरता प्रोविजनल स्टोर। औरतों को सुई भिलावे धागे काली मणियां देती और बदले में बासी रोटियां पुराने कपड़े लेती। गंगू निकल गई, मैं उदास हो गया। मैं बढ़ रहा था कर्ण की तरह पूरे महाभारत पर। मसाई के प्रति हनुमंता का आकर्षण अब कम होने लगा, रोज झगड़े होते। हनुमंता कहता यह लड़का मेरा नहीं है, इसकी आंखें धौड़ी कुम्हार की तरह हैं। कुम्हार धौड़ी ब्रिटिशों के समय का बहुत बड़ा डकैत था। अंत में हनुमंता के अत्याचारों और आरोपों से तंग आकर मसा माए मुझे लेकर अपनी माँ संता माए के घर आ गईं। माँ और धरती दो ही ऐसी इकाइयां हैं जो किसी भी बात को अपने भीतर स्वीकार कर लेती हैं। औरों की लुगाई सुंदर और अपनी कुरूप, सुंदर लड़की का जन्म दलित जाति के लिए यहाँ की पदेयद यहाँ का मुहावरा है। मसा माए को उसके पति ने छोड़ दिया था, इसके मूल में उसका सौंदर्य ही था। हनुमंता भी भोकर अलग हुआ, अलग हट गया। माँ मुझे भाग की तरह लेकर जा रही थी। कितने दिनों तक वह अकेली जी सकती थी, जिनके पास वर्ण श्रेष्ठत्व से प्राप्त सत्ता तथा वंश परंपरा से प्राप्त संपत्ति रही है, उन्होंने यहाँ की दलित स्त्रियों को सतत भोगा है। देहात देहात के जमींदारों पटेलों ने खेतों में काम करने वाली दलित स्त्रियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। रंडियों की तरह उन्होंने इनका उपभोग किया है। दलितों की लड़कियां इनकी वासना का शिकार होती हैं। इनके द्वारा किए गए स्ववैराचार से संतति जन्म लेती रहती हैं। जमींदार के इशारे पर जीने वाला घर हर गांव में होता है। पूरा गांव इस घर को पटेल की रंडी का घर कहता रहता है। इस स्त्री की संतति की पहचान पटेल की रंडी के बच्चों के रूप में ही बनती है। पटेल की दया पर खुश होकर ही जीने में उनके जीवन की सार्थकता होती है। यूं बदले में उन्हें मिलता ही क्या है। मेरे बाद नागी हुई, निर्मी हुई, वनी, सुनी, पमी, तम्मा, इंदिरा, सिद्राम, कितने बच्चे ये सब मेरे बाद हुए। एक कहीं गर्भ में, एक कहीं रक्त से सिंचित। माँ एक पर बाप अलग अलग। मसा माँ को विठल कांबले से 3 बच्चे हुए। पहला भानुदास मर गया, चंद्रकांत और लक्ष्मण उसके बाद का। इन दोनों को माँ से छीन लिया गया, हणमंता लिम्बालय से मेरा जन्म हुआ। काका से मतलब हन्नूर से, यशवंत राव सिद्रा माप्पा पोलिस, पटेल से नागू, निर्मला वनमाला, सुनंदा प्रमीला श्रीकांत इंदिरा तथा सिद्राम हुए। काका जी ने कागज पत्रों पर इन सब की जाति हिंदू लिंगायत लगा दी है, पर गांव का एक भी लिंगायत हमें छूता भी नहीं था, अपनी जाति हमें स्वीकार नहीं करता। यह एक समंदार दलित बस्ती है। यूं मेरा बाप लिंगायत, उसके दादा परदादा भी लिंगायत, इसलिए मैं लिंगायत। मेरी माँ अछूत महार, इसलिए मैं भी दलित अछूत। पर जन्म से लेकर आज तक मुझे मेरे नाना ने, मतलब महमूद दस्तगीर जमादार नामक मुसलमान ने पाला पोसा है, इसलिए मैं मुसलमान। मैं मुसलमान क्यों नहीं? दादा की ममता मुझ पर अपने धर्म का हक क्यों नहीं जताती? क्या मैं सवर्ण हूं? नहीं, क्योंकि मेरी माँ अस्पृश्य। क्या मैं अस्पृश्य? नहीं, क्योंकि मेरे पिता सवर्ण। मैं जरासंध की तरह। गांव और गांव के बाहर दोनों ओर विभाजित, मैं कौन? मेरी आमल किस से? ग्राम पंचायत का काम निकल जाने के बाद दादा ने हमाली शुरू कर दी। हमारे गांव में पूरे दिन में 8 बसें आती थीं, एक गाड़ी मुकाम के लिए आती, रुपए 1.5 रुपए में हमारा दिन गुजर जाता था। दादा के दांत गिर चुके थे, नजर भी कम हो रही थी, पहले की तरह अब शक्ति नहीं थी। बावजूद इसके मृत्यु का बोझ लिए वह बस पर चढ़ते फिर उतरते। भारत स्वतंत्र हुआ था तब की बात, हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हुए। हैदराबाद निजाम की स्वतंत्रता के लिए भारतीय फौजें आईं। उन दिनों पुलिस से लेकर आम आदमी तक सभी ने मुसलमानों पर अत्याचार किए, उन्हें काटा, उनकी औरतें लड़कियां भगाई। भारतीय सेना जब हमारे गांव से गुजर रही थी तब गांव की पटेल मल्लेश पटेल के पास थी। दादा कोतवाल थे। मल्लेश पटेल ने मिलिट्री को शानदार खाना दिया था। खाना खाकर खाना खाकर फौज आराम कर रही थी। दादा ने पगड़ी खोली, सिर पर शिखा नहीं थी। फौज चिढ़ गई, बंदूक का निशाना बनाया जाने लगा। दादा की धोती निकल आई, उनका शिश न देखा गया। दादा पर गोली चलाई जाने वाली थी कि इस बीच मल्लेश पटेल को पता चला, उन्होंने उन्हें बचाया। पता नहीं इस मुसलमान ने क्या पाप किया था, दादा मर जाते तो आज हम सड़क पर आ जाते। संता माय से अब कोई काम नहीं होता, मैं छोटा। दादा को जब कुछ मजदूरी मिलती तभी रोटियां मिलती। मुसलमानों में एक से अधिक विवाहों की अनुमति है। दस्तगीर पहलवान की पत्नी का लड़का है दादा। बुहरानपुर की किसी स्त्री से उसका विवाह हुआ था, पर संतति नहीं हुई, वह भाग गई। परिणामतः दादा ने पूरी जिंदगी संता माई के साथ गुजार दी। जाति बिरादरी के परे जाकर उन्होंने मुझे प्यार दिया। अपने बच्चों की तरह उन्होंने मेरी देखभाल की। न धर्म बना न जाति बिरादरी। मनुष्य धर्म को रोकता है अथवा धर्म मनुष्य को। धर्म का दायरा बड़ा है इंसानियत का। धर्म का दायरा बड़ा है कि इंसानियत का। मनुष्य के लिए धर्म है कि धर्म के लिए मनुष्य। मनुष्य धर्म को विकृत करता है अथवा धर्म मनुष्य को। धर्म जाति और बिरादरी को त्याग कर क्या मनुष्य जी नहीं सकता? बुधवार को दादा पूरे नशे में होते। बुधवार को गांव में सप्ताह का बाजार भरता, 5-6 रुपये हमाली के मिलते। इस बाजार से कुछ खरीदकर खाने के लिए दादा मुझे नागी, निर्मी, पम्मी को 10-10 पैसे देते। शाम को दादा और संता माई के झगड़े होते हिसाब को लेकर। दोनों खाना नहीं खाते, मटन वैसे ही पड़ा रहता। दूसरे दिन संता माई मटन गर्म कर खा लेती। नींद में पेशाब की मुझे आदत थी। सपने देखने से मैं घबराता और अनजाने में पेशाब हो जाता। बिस्तर पेशाब से भींगकर गीला हो जाता। सब चिल्लाते कहते इसके नुन्नू को दागना चाहिए। मैं घबरा जाता, कम्बल धूप में सुखाने डालता, उसी कम्बल को बिछाता, उसी को ओढ़ लेता। कम्बल से पेशाब की दुर्गंध आती, पर उस गंध की आदत मुझे हो चुकी थी। कुछ भी गलत नहीं लगता, पेट हाथ पर ही था। दादा अकेले हमाली करते, रोज कमाओ रोज खाओ। दिन भर की हमाली भी कितनी आती, किलो 1.5 किलो ज्वार, 10 पैसे का मीठा तेल, 4 आने की दाल, बीड़ी 10-20 पैसे की। शनिवार रविवार पत्थर की तरह महसूस होते। उस दिन हमाली नहीं होती। सोमवार को अक्कलकोट का बाजार, उस दिन 5-6 रुपये मिलते। बुधवार तक का खर्चा निकल जाता। बुधवार को हमारे गांव का बाजार, गुरुवार शुक्र निकल जाते। शनिवार रविवार खस्ता हालत हो जाती। इन्हीं 2 दिनों में दादा नींद में अजनबियों के नाम लेकर हमाली मांगते। एक गठरी की हमाली 10 पैसे की। 10-10 पैसे से दिन गिना जाता। इस बस से 20 पैसे की प्राप्ति हो गई तो अगली बस से कितनी मिलेगी। 1 किलो अनाज के लिए और कितने पैसे कम हैं। 100 ग्राम अनाज की हमाली तो मिलेगी क्या। अगर प्राप्ति ही नहीं तो उधार किससे मांगू। दादा बस की प्रतीक्षा करते, किसी से बीड़ी मांग कर लाते और फूंकते। संता माय लोगों से खैनी मांग लाती। दादा को कोई चीज दादा को कोई चाय पिलाता तो वह आधी पीकर आधी मुझे ला कर देते। अगर कोई आधी चाय देता तो वह खुद न पीकर संता माय को देते। 10 पैसे की चाय हमारे लिए बहुत कीमती लगती। इन 10 पैसों के लिए दादा मौत का वजन ढोते। चाय की इच्छा हुई भी हो तो भी चाय पीने की इच्छा नहीं होती। 1 किलो अनाज के लिए अगर उतने पैसे कम पड़ गए तो बस के नाम पट बदलने के काम के लिए जब दादा मुझसे कहते तो मुझे बेहद खुशी होती। ड्राइवर की केबिन में जाने का अवसर मिलता। ड्राइवर की बैठने की जगह के प्रति मेरे मन में आदर की भावना थी। नाम पट बदलकर निकलते समय मैं ड्राइवर की सीट पर थोड़ी देर के लिए बैठता, सीट के भीतरी स्पंज को चुराता। उस स्पंज को पानी में भिगोकर स्कूल ले जाता स्लेट पोछने के लिए। चलती बस के ड्राइवर को मैं नमस्कार करता। जब वह नमस्कार लेता तो बड़ी खुशी होती। अगर वह नमस्कार ना करता तो मैं ड्राइवर को गालियां देता। मोटर की चाबी नहीं, ड्राइवर की बुल्ली नहीं। मोटर धूल उड़ाती निकल जाती। आने वाली प्रत्येक बस हमारी भूख बनकर आती, रोटी देकर जाती। वेश्या जैसे अपने ग्राहक की प्रतीक्षा करती बैठती है, वैसे हम स्टैंड पर बैठकर इंतजार करते। बस दिखी कि मुझे खुशी होती। कम से कम 4-8 आने तो मजदूरी मिलते। दादा मुझे चाय पिला रहे, ऐसी इच्छा होती। कभी कभी बसें खाली आती, खाली जाती बांझ स्त्री के गर्भ की तरह। गर्भपात के बाद जैसे कोई स्त्री अपने नए गर्भ को संभालती है, वैसे हम अपनी आशाएं संभालते। ठंडा चूल्हा, खाली बर्तन, खुली बस हमारे कलेजे को काटती। बहुत भूख लगी है, टोकरी में एक भी रोटी नहीं है। दादा, संता माय और मैं, इन तीनों की भूख की पूर्ति यह अकेली रोटी कैसे करेगी। संता माँ शमशानवत चेहरा करके बैठती, दादा को मैं पानी देता, बस में वह जैसे पानी भरता वैसे पानी पी लेता। उस दिन बस पर ज्वारी की का थैला चढ़ाते समय दादा के सिर पर से थैला नीचे गिर गया। कंडक्टर तेजी से दूर हट गया। अगर उसके हटने में 1 सेकंड का भी फर्क हो जाता तो वह वहीं मर जाता। उसने दादा को बहुत गालियां दी। कल से हमाले न करो, कहा। मैं भयभीत हो गया, दिल कांपने लगा। दुर्घटना में बस उलटने के बाद जैसी स्थिति हो जाती है वैसी स्थिति मेरी हो गई थी। दादा की हमाली अगर छूटी तो हमारा क्या होगा? दिन पत्थर की तरह कटता, बसों का आना जाना बस इतनी ही घटना घटती। बाहर से कोई बाबू आ जाए तो कुछ विशेष महसूस होता। मैं उसे निहारता, दिन भर स्टैंड की बेंच पर बैठा रहता। बस का अड्डा ही हमारा घर, बेंचों के नीचे दो चार गुदड़ियां दबाकर रख देते। रात में उन्हें बाहर निकालते, बस अड्डे पर सो जाते। दो चार यात्री साथ में होते, पागल जेनी रात भर चिंदिया अलग करती रहती। उपयोग में लाए हुए टिकटों की तरह हम पड़े रहते। सवेरे जल्दी जल्दी जगना पड़ता, ड्राइवर कंडक्टर चिढ़ जाते। एक बार तो हमारी गुदड़ियां उन्होंने सड़क पर फेंक दी थी। मसा माँ, मेरी सगी माँ, मुझसे सौतेली माँ का व्यवहार करती। इसी कारण मैं संता माँ का हो चुका था। मसा माँ मुझे पीटती तो संता माँ छुड़ाती, फिर दोनों झगड़ती। एक बार मुझे लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। परिणामतः संता माँ ने महारों की बस्ती में रहना ही छोड़ दिया। स्टैंड पर रहने आई, वहीं हमाली करती, वहीं खाते, वहीं सोते। आरंभ के कुछ दिन हम स्टैंड पर खुले ही रहे। 3 पत्थरों का चूल्हा, हवा के कारण चूल्हे की ज्वालाएं आधी बाहर जाती आधी भीतर। रोटी सेकी ही नहीं जाती। चूल्हे के लिए घास फूस इकट्ठे कर लाने का काम मेरा होता था। खेतों में जब घास फूस की चीजें लाने जाता तो किसान मारने दौड़ते, हाथों पैरों में कांटे घुसते। स्टैंड के पीछे जो मैदान था वहां खुले में खाना खाते, वहीं रहते। वर्षा काल के लिए टीन की एक झोपड़ी बना चुके थे। शराब की बोतलों को धोकर मीठा तेल और मिट्टी के तेल के लिए उनका उपयोग करते। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा, 3 पत्थरों का चूल्हा, हमारी झोपड़ी की ये महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। वर्षा के दिनों में पूरी झोपड़ी टपकती थी और गर्मी के दिनों में हम पसीने से लथपथ हो जाते। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि रात में आराम से पैर फैलाना भी संभव नहीं होता था। कभी फैला भी देता तो पैर चूल्हे में घुसते। रोज रात में सोते समय संता माएँ गरजती, पैर लंबे करके मत सो। पर नींद में पैर अनायास फैल जाते। टोकरी में रखी रोटियां, जर्मन का एक लोटा, दो थालियां, मिट्टी के छोटे बड़े बर्तन और लकड़ी का एक बक्सा, इतना हमारा संसार। फर्श का एक बड़ा टुकड़ा दादा ले आए थे, उस पर ज्वार की रोटियां बनाई जाती, चटनी पिसी जाती।